नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत। और आज आपके साथ मैं हूं जागृति शर्मा। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार।
कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन आज होगा। पहले दौर के मुकाबले कल से खेले जाएंगे। आर प्रज्ञानंदा और महिला वर्ग में कोनेरू हम्पी भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मैच जारी। वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने फुकेट में आईडब्ल्यूएफ विश्व कप में कांस्य पदक जीता। और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले मुक्केबाजों के प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दी। और सबसे पहले बात करेंगे चेस की, शतरंज की, क्योंकि हमारे यहां पर इस समय चर्चा का विषय है। कुछ चेहरे, युवा चेहरे, जिन्होंने अपने खेल से, अपने प्रदर्शन से और अपनी अप्रतिम प्रतिभा के कारण लोगों के दिलों में भी जगह बनाई है इस खेल के माध्यम से।
और खासतौर से प्रज्ञानंदा, जिसके बारे में बहुत कुछ हम लोग बातचीत करने वाले हैं। जब फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के फाइनल में वो पहुंचे और विश्वनाथन आनंद के बाद केवल दूसरे ऐसे भारतीय ग्रैंड मास्टर बने थे, तो उस समय दो दिन तक जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड नंबर वन को संघर्ष करने पर मजबूर किया था, तो उसके बाद से उनका कद काफी छोटे हैं, लेकिन कद ऊंचा हो गया और निश्चित रूप से भारत को इस टूर्नामेंट में काफी उम्मीदें हैं उनसे।
बिल्कुल। और कनाडा के टोरंटो में आज कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा, जबकि पहले दौर के मुकाबले कल से खेले जाएंगे। और अभी जैसा शबाब आपने बताया कि आर प्रज्ञानानंदा, जो कि चर्चा का विषय हैं, इस समय चर्चित खिलाड़ी हैं, वो चुनौती पेश करेंगे भारत की ओर से। और इसके अलावा महिलाओं में ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी भी भारतीय चुनौती पेश करेंगी और उनके साथ होंगी आर वैशाली, जो कि भाई बहन की जोड़ी। इधर आर प्रज्ञानानंदा
जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुकाबला भी काफी दिलचस्प होगा। वैशाली, रमेश बाबू और कोनेरू हम्पी, के दोनों भारतीय खिलाड़ी। और फिर जैसा कि आपने बताया कि जब शतरंज के बिसात पर ये दोनों बैठेंगे तो क्या मनोवैज्ञानिक दबाव एक दूसरे पर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन शतरंज बहुत ही मजबूत मानसिकता वाले लोगों का खेल है।
बिल्कुल,
उसमें जरा सा भी दबाव महसूस नहीं करता। और जिस शतरंज खिलाड़ी की बात हमने की, रमेश बाबू की, कि किस तरह से उन्होंने शानदार तरीके से दो दिनों तक एक वर्ल्ड चैंपियनशिप और उसका फाइनल, दो दिनों तक अगर आप किसी को संघर्ष करते हैं अपने से कहीं ज्यादा रेटेड खिलाड़ी को, तो वो बड़ी बात है। तो शतरंज की बिसात जब बिछ जाती है तो माहौल कुछ अलग हो जाता है।
बिल्कुल। आर प्रज्ञानानंदा इसमें सबसे मजबूत दावेदार के रूप में अपना अभियान शुरू करेंगे और इसमें तीन भारतीय प्रतिभागी शामिल रहेंगे। प्रज्ञानानंदा के साथ डी गुकेश और विदित गुजराती भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। और लगभग
और इन दोनों का भी मुकाबला आपस में होने वाला है फर्स्ट राउंड में।
जी, ये बड़ा ही रोमांचक
रहेगा, बैठेंगे, ये भी काफी रोमांचक होगा। निश्चित रूप से इस पर भी नजर रखनी होगी।
बिल्कुल। और लगभग 35 सालों के बाद आठ खिलाड़ियों के इस टूर्नामेंट के लिए ऐसा है कि जब तीन भारतीयों ने क्वालिफाई किया है।
और अगर आप थोड़ी सी आपकी इजाजत हो तो जानकारी दे दूं, क्योंकि फिडे शतरंज जो इंटरनेशनल संस्था है उसके यूट्यूब चैनल पर रात 12 बजे से भारतीय समय के अनुसार अगर आप चाहें तो, चूंकि बहुत ही आराम से खेला जाने वाला ये शतरंज होता है तो आराम से आप देख भी सकते हैं।
हाँ बिल्कुल।
तो 4 अप्रैल होगी और भारतीय समय अनुसार 12 बजे से फर्स्ट राउंड के मुकाबले शुरू हो जाएंगे।
जी, और इसीलिए हमने कहा कि उद्घाटन जो है वो आज होगा और मुकाबले जो है वो कल से खेले जाएंगे, क्योंकि भारतीय समय के अनुसार समय बदल जाएगा। रात को 12 बजे से शतरंज की बिछात बिछ जाएगी और भारतीय जो प्रतिभा है वो अपने परचम और जो झंडा है वो गाड़ना कहीं न कहीं शुरू कर देगी। और हमें भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी और कल का जो कार्यक्रम होगा उसमें हम कहीं न कहीं जीत की बात कर रहे होंगे।
बिल्कुल, आप भी बधाई के पात्र हैं कि जहां आईपीएल का जलवा है पूरे देश में, वहां आपने शतरंज से आज के स्पोर्ट्स स्कैन की शुरूआत की। तो ये बहुत जरूरी होता है कि कुछ ऐसे खेल हैं जो हो सकता है हमारे खेल प्रेमियों को इसके बारे में जानकारी न हो।
बिल्कुल,
तो उनको जानकारी मिली। और निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि केवल विश्वनाथन आनंद ने जो भारतीय शतरंज के लिए किया है उसके बाद ये श्रृंखला रुकी नहीं है, ये सफर लगातार आगे है। और लगातार जो युवा दल है इस समय भारतीय शतरंज का वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है।
बिल्कुल, और न केवल ये अगर हम बात करें पुरुषों में बल्कि महिलाओं में भी अब धीरे धीरे करके जो है इस खेल की ओर रुझान बढ़ रहा है। और जैसे कहें कि जब हम देखते हैं कि जो एक टैलेंट है किसी भी खेल का आगे बढ़ता है इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसे एक रिकॉग्निशन मिलता है तो जो मोरल सपोर्ट है बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको मिलने लगता है।
और देखिये शतरंज एक ऐसा खेल है, आप इसी शतरंज टूर्नामेंट जो शुरू हो रहा है उसकी बात करें तो इसका जो विजेता है वो पात्रता हासिल करता है वर्ल्ड चैंपियन जो चेस का होता है उसके खिलाफ खेलने का, यानी कि मैच जीतने का नहीं। तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का जो वर्ल्ड चैंपियन है वो कितना बड़ा होता है आप इसका अंदाजा लगाइए।
जो ये आठ खिलाड़ी यहां पर खेलेंगे जो इनमें से निकलेगा वो वर्ल्ड चैंपियन से भिड़ेगा
जी, उसकी पात्रता हासिल करेगा, समझिए एक तरह
उसके लिए पात्रता हासिल करनी है। तो ये अपने आप में बहुत ही रोमांचक भी है और बहुत कठिन भी है।
बिल्कुल,
और जैसा आपने बता ही दिया है कि इस प्रतियोगिता के विजेता को विश्व चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में खेलने का मौका मिलेगा। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंदा की भी बात हो रही थी, तो इन्होंने और इनकी जो बहन है इन्होंने प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करके एक इतिहास भी रचा है, क्योंकि इन दोनों को शतरंज के इतिहास की सबसे मजबूत भाई बहन की जोड़ी माना जा रहा है और पहली बार दोनों ने कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बनाई है।
जी हाँ, ये तो बहुत ही ऐतिहासिक मौका है और सिर्फ भारतीय शतरंज नहीं बल्कि विश्व शतरंज में एक इतिहास रचा गया है।
जी बिल्कुल, सभी आठ जो प्रतिभागी हैं वो बता दें कि एक दूसरे के खिलाफ दो बार खेलेंगे इसमें और तीन हफ्ते तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के दौरान चार दिन का आराम भी यहां पर मिलेगा। और अब बात करते हैं आईपीएल की, जहां विशाखापत्तनम के वाईएस राजशेखर स्टेडियम में इस समय दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच जारी है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है और ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता नाइट राइडर्स ने 12 ओवर का खेल जो है खेल लिया है। 13वां ओवर अभी जारी है और दो विकेट के नुकसान पर 164 रन बना लिए हैं।
इसका मतलब है कि एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है। हालांकि देखा जाए तो दिल्ली के खिलाफ पिछले दो तीन मैचों में आईपीएल की अगर बात करें पिछले आईपीएल की उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था
जी,
लेकिन इस मरतबा अच्छा स्कोर खड़ा किया निश्चित रूप से। और दिल्ली को जरूरत है, क्योंकि आप तो अच्छी पोजीशन में है इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो, लेकिन दिल्ली को जरूरत है एक जीत की, क्योंकि देखिए आज अगर मिल जाती है तब इनका सफर और आगे बढ़ेगा। वरना जिस तरह का स्कोर अभी तक खड़ा किया है, काफी ओवर्स अभी बाकी है, विकेट्स उनके पास शेष हैं, निश्चित रूप से तो एक बड़ा स्कोर खड़ा होने वाला है केकेआर की तरफ से।
लेकिन बड़ा स्कोर आपने कहा, बड़े स्कोर के होने से क्या लगता है कि एक बन जाता है मनोवैज्ञानिक की दबाव की हाँ ये मैच हम जीतने वाले हैं, क्योंकि
नहीं ऐसा
अगर
नहीं।
क्रिकेट के उसमें गेम में देखा जाए तो कोई भी किसी भी ना स्कोर की कोई लिमिट
आप
नहीं।
इसी टूर्नामेंट की बात करें आईपीएल 2024 की, 241 रन बना के भी हार का सामना करना पड़ा
जी,
तो इसमें कितना रन बन पाएगा। हाँ एक जरूर क्रिकेट में ये कहा जाता है कि जो रन चेस है वो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पर थोड़ा परेशान करता है कि आपको चेस दिया गया है, टारगेट दिया गया है, इसे पूरा करना है, अगर नहीं कर पाए लड़खड़ा गए तो मुश्किल हो सकती है। और शुरू में जो बल्लेबाजी जो टीम करती है वो इस मनोवैज्ञानिक दबाव से थोड़ा सा ऊपर रहती है, लेकिन T20 क्रिकेट तो एक ऐसी क्रिकेट का फॉर्मेट है कि इसमें कब क्या कुछ बदल जाए कहना बहुत
स्पीड फॉर्मेट का गेम है।
जी हाँ बिल्कुल,
कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है। और अगर कल के मैच की हम बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 28 रन से हरा दिया। 182 रन के लक्ष्य के जवाब में बेंगलुरु की टीम 19 ओवर और 4 गेंद में 153 रन पर आउट हो गई और लखनऊ के तेज गेंदबाज मयंक यादव ने 3 विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। हालांकि गौर करने वाली बात इसमें यह है कि मयंक ने जो कल गेंद डाली थी उसकी गति थी 156.7 किलोमीटर प्रति घंटा और ये आईपीएल के इतिहास की चौथी सबसे तेज।
जी हाँ, पिछले मैच में भी उन्होंने 150 पार किया था और इस मरतबा भी, और काफी कुछ चर्चा हो रही है। मयंक यादव दिल्ली से खेलते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, बिहार से उनका संबंध है सुपौल जिले से, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह की न केवल तेजी है, उमरान मलिक भी तेज गेंदबाजी करते थे आईपीएल में और फिर इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन सटीक गेंदबाजी करते हैं वो, और जब स्टंप पर अगर गेंद आ रही है, आप बैट पर नहीं ले पाए तो पैड पर लेना पड़ेगा आपको, और उसमें रफ्तार भी हो तो किसी भी बैटर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है। तो मयंक यादव न केवल रफ्तार के गाजी हैं, बल्कि यह देखा जाए कि जिस तरह से उनकी लाइन और लेंथ जिस प्रकार की है, गजब की लाइन और लेंथ है। और मुझे तो आश्चर्य नहीं होगा अगर जो T20 विश्व कप के लिए अगर टीम अनाउंस होगी तो उसमें उनका नाम,
मयंक का नाम जी हो सकता है बिल्कुल। और भारत की स्टार वेटलिफ्टर बिंदिया रानी देवी ने कल फुकेट में IWF विश्व कप में कांस्य पदक जीता है। बिंदिया रानी ने कुल 196 किलोग्राम वजन उठाकर स्टैंडिंग में तीसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने 83 किलोग्राम स्नैच और 113 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में भार उठाया। हालांकि बर्मिंगम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में 203 किलोग्राम के रजत पदक से उनका प्रयास ये कम था। भारत की ओर से बिंदिया रानी और मीराबाई चानू ही IWF विश्व कप में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं और ये टूर्नामेंट 11 अप्रैल को समाप्त होगा। भारत की स्टार पहलवान अंतिम पंघाल ने 11 अप्रैल से बिश्केक में शुरू होने वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया है। उन्होंने ये फैसला लिया है अपना जो पेरिस ओलंपिक्स है उनमें अपना और बेहतर जो वो ट्रेनिंग ले सके।
या जो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बात की आशंका होती है कि कहीं बड़े मुकाबले से पहले, बड़े इवेंट से पहले कोई चोटिल ना हो जाए, इसके कारण वो टूर्नामेंट से अपना नाम लेते हैं, क्योंकि अब पेरिस ओलंपिक में बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सही निर्णय है। हालांकि इस टूर्नामेंट में अगर बने रहते तो थोड़ा अभ्यास हो जाता, लेकिन ये एक ऐसा मुकाबला है इसमें अभ्यास के साथ साथ चोट का बहुत ज्यादा अंदेशा रहता है।
जी, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 11 अप्रैल से शुरू होकर 16 अप्रैल को समाप्त होगी। टूर्नामेंट के बाद पेरिस 2024 के लिए एशियाई क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होगा। और खेल मंत्रालय के मिशन ओलंपिक सेल ने पेरिस ओलंपिक के लिए जाने वाले मुक्केबाजों के तुर्की में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय ने कहा है कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स के तहत भारतीय मुक्केबाज निकत जरीन, प्रीति पवार, परवीन हुडा और लवलीना बोरगोहेन के साथ साथ दो कोच और एक फिजियो को तुर्की में विशेष विदेशी प्रशिक्षण शिविर के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो सरकार की जो ये टॉप्स की जो स्कीम है, इसके तहत हर तरीके का अगर आपको प्रशिक्षण चाहिए बाहर जाने के लिए और अगर आप यहां पर भी चाहते हैं,
देखिए इसके तो रिजल्ट भी सामने आने लगे हैं। टॉप्स की जो स्कीम है उसके रिजल्ट आने लगे हैं। ओलंपिक में मेडल्स बढ़े हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में मेडल्स बढ़े हैं
जी।
तो अगर इस तरह की स्कीम सुचारू रूप से चलती है किसी भी सरकार के द्वारा, खेल मंत्रालय की तरफ से, तो निश्चित रूप से ये कहना पड़ेगा कि ये इसके जिस तरह के नतीजे हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में हमने देखे हैं, निश्चित रूप से आप विदेश में अगर प्रशिक्षण के लिए अपने खिलाड़ियों को भेजते हैं, वो उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी जो कि ओलंपिक में भाग लेने वाले हैं, तो उनके लिए काफी खर्च आता है। लेकिन यहां पर भारत सरकार ने के खेल मंत्रालय ने इसके लिए पूरा बीड़ा उठाया है। पिछले बजट में हमने देखा कि इसमें काफी प्रावधान रखे गए हैं टॉप्स के लिए, फिर खेलो इंडिया के लिए। तो ये दो ऐसी चीजें, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया, जिसमें से काफी संख्या में खिलाड़ी निकल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाते हैं, और टॉप्स स्कीम है कि आप बड़े अंतर्राष्ट्रीय इवेंट्स के लिए अगर तैयारी करते हैं तो जो भारत सरकार है वो आपको न केवल सहायता करेगी बल्कि आपके मन चाहे कोच प्रशिक्षण, और फिर कहां पर आप प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, भौगोलिक स्थिति से की भी जांच पड़ताल की जाती है, मौसम कैसा रहेगा, किस तरह के प्रशिक्षक वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं, इन सब सारी सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से मिलती हैं खिलाड़ियों को।
चलते चलते आपको बता दें कि भारत की युवा खिलाड़ी अनमोल खरब ने हम वतन मालविका बसोड को हराकर आज कजाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम 28 अप्रैल से 9 मई तक 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी और इस दौरान सभी मैच जो हैं वो सिलहट में खेले जाएंगे, डे नाइट मैच होंगे। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो सबाब आपका धन्यवाद और आप सभी को नमस्कार।